आधुनिक काव्य भाग एक पंचम प्रश्न पत्र आधुनिकता की राह के आरंभिक डग कृष्णमोहन। आधुनिक हिंदी काव्य के पहले व्यवस्थित प्रस्तोता मैथिली शरण गुप्त की कविता भारतीय राष्ट्र की विशिष्टता की खोज और उसकी अपने ढंग से की हुई पहचान की कविता है। भारत भारती से लिया गया हम कौन थे शीर्षक काव्यांश सही अर्थों में अस्मिता की खोज को व्यंजित करता है। इस प्रश्न का जो उत्तर गुप्त जी को मिलता है उस पर दो राय हो सकती है, लेकिन उनकी जिज्ञासा के आशय असंदिग्ध है। आधुनिक युग के अनुरूप प्रश्नाकुलता और अपने देश समाज के भाग्य से जुड़ने की आकांक्षा उन्हें एक वास्तविक राष्ट्रकवि बनाती है, इसमें भी संदेह नहीं। देश के प्राचीन गौरव की याद में आंसू बहाते हुए उसकी पुनर्स्थापना का आदर्श ही हमारे आधुनिक राष्ट्र का विडम्बना मूलक आदर्श बना। मैथिली शरण गुप्त इसके बिल्कुल आरंभिक गायकों में से थे। राष्ट्र के गौरव की खोज संभवतः ही गुप्त जी को अतीत के आख्यानों की मनोरम भूमि पर ले गई, किंतु वहाँ भी उनका आधुनिक मन वंचितों तिरस्कृतों की ओर विशेष रूप से उन्मुख था। उर्मिला कैकई और यशोधरा जैसी परंपरा से तिरस्कृत और सहानुभूति से वंचित स्त्री चरित्रों के मर्म का उद्घाटन उनकी महती भूमिका के अनुरूप ही था। विरस वचना की शिकार होकर भी स्त्री अपना सहज मान नहीं छोड़ती और अपने अस्तित्व को प्रमाणित करती है। आधुनिकता के आरंभिक कदम के अनुरूप खुद की खोज से शुरू हुई यह यात्रा आगे बढ़ने पर स्वयं को संघर्षों और द्वंद्वों के केंद्र में पाती है। स्वाधीनता संघर्ष का विकराल झंझावात एक ओर और आधुनिक पूंजीवादी युग में मानव जीवन की तनावग्रस्त सहजता दूसरी ओर इच्छा ज्ञान और क्रिया में तालमेल के अभाव के चलते विकट कोलाहल में फंसा जीवन। ऐसे में जयशंकर प्रसाद के यहाँ श्रम और विश्रांति का रात और दिन की तरह स्वाभाविक सामंजस्य प्रकट हुआ, जो मनुष्य की आदिम और शाश्वत इच्छा की ही अभिव्यक्ति थी। निर्जन सागर में ले चलने का आग्रह संघर्ष से पलायन का सूचक नहीं था, जैसा कि कुछ हलकों में गति से मान लिया गया था, बल्कि यह नई ऊर्जा को समेटने और सार्थक पुनर्जीवन के लिए विश्रांति का आह्वान था। नवसर्जन के लिए नई दृष्टि की आवश्यकता थी, जो निर्जन और कोलाहल सुख और दुख श्रम और विश्राम तथा निद्रा और जागरण की एकता को दिखाने वाली द्वंद्वात्मक दृष्टि ही हो सकती है। यही जीवन को सार्थक बना सकती है। मेरे नाविक तुमुल कोलाहल कलह और बीती विभावरी इसी संवेदना का प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाएं हैं। आवेदना मिली विदाई में जीवन के निरर्थक रह जाने की आशंका की कचोट है, जो प्रकारांतर से सार्थकता के लिए अनिवार्य और उपयुक्त दृष्टि का संकेत भी करती है। पेसोला की प्रतिध्वनि शीर्षक कविता पूर्व और पश्चिम के टकराव से उपजे मूल्यों की चुनौती को स्वीकारने का आह्वान करती है। इन अर्थों में इसे भारत भारती की संवेदना का विस्तार भी कहा जा सकता है। पूंजीवादी राष्ट्रवाद से आगे बढ़कर निराला की कविता में मजदूर किसान के श्रम और संघर्ष का संगीत सुनाई पड़ता है। बादल राग 6 की आरंभिक पंक्तियों में सुख पर दुख की छाया और दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया जैसे काव्यांशों के द्वारा कविता का संबंध द्वंद्वात्मक चेतना से जुड़ता है। आगे भी समुची कविता में आकाश और धरती बादल और पौधे तथा इस प्रकार क्रांतिकारी शक्तियों और जनता की द्वंद्वात्मक एकता का निदर्शन होता है। तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में श्याम तन भर बधा यौवन जैसी शब्दावली एक तरफ रीतिकालीन काव्य भाषा के दाय को स्वीकार करती है तो दूसरी तरफ भारी हथौड़ा से पत्थर ही नहीं सामने स्थित अट्टालिका को भी मानो अपने प्रहारों से तोड़ने का यत्न करती स्त्री का चित्रण हुआ है। वह अपने कर्म में तल्लीन है, पर जैसे जैसे दोपहर होती है झुलसाती हुई लू में काम करते हुए उसके मन की वेदना और रोष भी उमड़ते हैं। वाचक की सहानुभूतिपूर्ण में सहज बंधुत्व का अनुभव कर उसकी मना स्थिति व्यक्त हो इसके पहले वह सामने स्थित भवन को देखती है कि वहाँ से कोई उसकी वेदना को देख नहीं रहा है। निराला उस विषम स्थिति में भी उस माननी के आहत अभिमान का ध्यान रखते हैं। उसकी आंखों में अन्याय सहने की पीड़ा तो है, लेकिन आंसू नहीं है, वेदना संघनित हो रही है। अंतिम पंक्ति मैं तोड़ती पत्थर का अर्थ मैं तोड़ती पत्थर हृदय है, यह खुद निराला ने बताया था, लेकिन यह पत्थर हृदय समाज का है जिसे तोड़ना कविता का अभिष्ट है। वह स्त्री अपने ही हृदय को पत्थर का नहीं बताना चाहती, जैसा कि डॉक्टर नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान में प्रस्तावित करते हैं। इस कविता में निराला ने सुर मीरा बिहारी और प्रसाद की परंपरा को मानो निचोड़ कर एक श्रमिक स्त्री का चित्रण किया है, जिससे आगे आने वाले प्रगतिशील कवियों के लिए नई राह खुलती है। संध्या सुंदरी शीर्षक कविता थके हुए को अपनी गोद में सुलाने की विशेषता के कारण मेरे नाविक और तुमुल कोलाहल कला की परंपरा में बढ़ती है। हालांकि भाषा के परिष्कार और मानवीकरण की पूर्णता में यह कविता समुचे युग में उत्कर्ष रचती है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की व कली जैसी अभिव्यक्ति प्रमाणित करती है कि काव्य भाषा के स्तर पर आधुनिक हिंदी काव्य रीति काव्य का ऋणी है, चाहे इससे कितना भी इनकार किया जाए। राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता में निराला ने सामंतवाद की सहयोगी ब्राह्मण कवि लेखक धार्मिक आदि तमाम शक्तियों की ऐतिहासिक भूमिका का पर्दाफाश किया है। हथियारों के टकराने के लिए लोक में भी अविस्मृत प्राय मुहावरे लोहा बजने का प्रयोग उन तमाम कवियों के लिए सीख है जो लोक के जीवंतता से वंचित होकर उसके सजावटी इस्तेमाल से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसने निर्जर बह गया है शीर्षक कविता में कवि की पुकार धातव्य है। पंक्ति मैं वो वह हूँ लिखी नहीं, जिसका अर्थ कहते हुए निराला का आशय यह नहीं कि वह पंक्ति निरर्थक है, बल्कि यह है कि उसका अर्थ समझने वाले नहीं है। यही वजह है कि अब डाल पर गीत गाने वाले पक्षी नहीं आते। यह अनुभूति निराला की बाहर मैं कर दिया गया हूँ और मैं ही वसंत का अग्रदूत जैसी असंख्य अभिव्यक्तियों से उजागर होती है। इस कविता के अंत में भी कवि स्पष्ट शब्दों में अपने मंतव्य को व्यक्त करता है, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। सुमित्रा नंदन पंत की कविता मोह की आरंभिक पंक्तियों में छायावाद के प्रकृति प्रेम का आदर्श आत्यंतिक रूप में प्रकट हो गया है। ये पंक्तियाँ पंत की कविता का तो घोषणा पत्र ही साबित हुई। स्त्री प्रेम की प्रकृति प्रेम के समक्ष अवहेलना का यह अनूठा उदाहरण है। प्रकृति कवि के भाव जगत में है, लेकिन स्त्री मानव से बाहर है। स्त्री में अनुरक्त होने के लिए जग को भूलना पड़ता है। यहाँ स्त्री के आकर्षण का भय और उसका प्रतिरोध दिखता है। कवि ने अपने लिए जो पथ चुना है उस पर टिके रहने के लिए आवश्यक है कि दूसरे प्रबल आकर्षण को नकारा जाए। किसी सच्चे रचनाकार के लिए प्रेरणा के उन छड़ों का जादू असीम को तहल जगाने वाला होता है जब अवचेतन के अंधेरे कोनों से निकलकर रचना उसकी सचेत कल्पना से भी महत्तर भूमिका हासिल कर लेती है। उसकी अपनी ही अभिव्यक्तियाँ मानो किसी और की हुई जान पड़ती हैं। इसलिए लगभग सभी कवि अपनी रचना प्रक्रिया से आविष्ट होते हैं और बार बार उसके बारे में प्रत्यक्ष परोक्ष संकेत देते रहते हैं। प्रथम रश्मि शीर्षक कविता में पंत भी रंगिनी और बाल विहंगिनी विशेषणों से अपनी रचना शक्ति को ही संबोधित करते हैं, जिसने नए युग के आरंभ को सबसे पहले जान लिया था। कविता रात और सुबह का रूपक रचती है, लेकिन उसमें प्रतिगामी शक्तियों को छायाहीन तन वाले कुचक्री भूतों के रूप में बखूबी पहचाना जा सकता है। स्वाधीनता के बाद कविवर पंत ने राष्ट्रीय जीवन को लक्ष्य कर सामाजिक उद्देश्यों वाली कविता भी लिखी, जिनमें भारत माता का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी संवेदना में भारतीय नागरिक विश्व प्रगति से निपट अपरिचित अर्ध सभ्य लोग थे, जिन्हें लोह संगठन और श्रद्धा दीपित मन की आवश्यकता थी। नवोदित राष्ट्र की सत्ता की भी ऐसी ही आवश्यकता थी। इसलिए पंत की कृति का सूर्य स्वाधीन भारत में भी उत्तरोत्तर प्रकाशित होता रहा। इसमें संदेह नहीं कि वे सिद्ध कवि थे। महादेवी वर्मा की कविताओं जब यह दीप थके तबाना और जाग तुझको दूर जाना में एक बार फिर श्रम और विश्रांति जागरण और निद्रा का चीर परिचित राष्ट्रीय रूपक दिखाई पड़ता है। कबीर ने कहा था कि सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, पर छायावाद युग में सोना अकर्मण्यता और आलस्य के बजाय नवजीवन और नव निर्माण की ऊर्जा को संचित करने का माध्यम बनकर आता है। महादेवी भी रात में देखे गए अपने स्वप्न को दूसरी आंखों में पहुंचाने की बात करती है। उसके बाद ही प्रणय और अभिसार की गुंजाइश है। इसलिए वे चीर विहरणी बनी रहती हैं और अपने प्रिय के आगमन के लिए कठिन शर्त रखती हैं। जब यह दीप थके तबाना, जब तक दीपक जल रहा है आंखों में नए युग के सपने मचल रहे हैं, और जैसे दीपक से दीपक जलता है वैसे ये सपने भी एक से दूसरे की आंखों में पलते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को बाधित करने की अनुमति प्रीतम को भी नहीं दी जा सकती। जब काम पूरा हो जाएगा थकान भी तभी आएगी, राम काज किने बिना मोही कहाँ विश्राम। मैं नींद भरी दुख की बदली में भी यूं तो नयनों में जलते दीपकों का उल्लेख है, किंतु उसका स्वर आवेदना मिली विदाई और उसने निर्जर बह गया है कि संगति में है। नव निर्माण की प्रक्रिया में मिला हुआ निराशा का यह स्वर उस राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भी बद्धमूल है, जिसकी अभिव्यक्ति छायावाद में हो रही थी। यह स्वर भारत माता से बिल्कुल अलग है। सत्ता जन आशावाद और आह्वान के बजाय यह स्वर जनता की आगामी निराशा और मोहभंग को पूर्वाभाषित करता प्रतीत होता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं। युगीन परिघटनाओं की जड़ सुदूर अतीत में होती है और सच्चे कवि कलाकार अपनी आत्मा की धड़कन में उसे तभी महसूस कर लेते हैं, इसलिए वर्तमान के चित्रण से नहीं अतीत की प्रतिध्वनि और भविष्य की पदचाप के चलते कोई रचना महान बनती है।